ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति नारायण मिश्र।
मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, ये पांच राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। तो पांच राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा कब हो सकती है केवी प्रसाद जी?
देखिए, इतना तो जरूर है कि वक्त किसी भी वक्त हो सकता है। इसके पीछे सीधा सीधा कारण यह है कि मिजोरम की जो वर्तमान असेंबली है वो 17 दिसंबर को उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो उससे पहले नई असेंबली का गठन होना जरूरी है। ठीक उसी तरह अगर हम देखें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 3 जनवरी 2024 और 6 जनवरी 2024 को उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 14 जनवरी को राजस्थान का और 16 जनवरी को तेलंगाना राज्य का। तो ऐसे में ये जाहिर है इससे पहले ही इन पांचों राज्यों के कार्यकाल खत्म होना है, उससे पहले नई विधानसभा का गठन होना है। अब अक्टूबर के शुरुआत में हम हैं और माना जाता है कि वे इलेक्शन होगा और अगले 25 दिसंबर के आगे उससे पहले ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि फिर विंटर हॉलीडे आएगी, ब्रेक आएगा, न्यू ईयर वगैरह। तो उम्मीद की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से जो भी संकेत है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग खुद जा रहे हैं, वहां कमिश्नर्स और जाके व्यवस्था की और पूरी जानकारी ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये दौरे पूरे हो जाएंगे, जब सारे तैयारी हो जाएगी, तो इस पे अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है।
इससे पहले भी हमने देखा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में घोषणाएं लगभग हो जाती हैं, कभी 3 कभी 6, ऐसा हमने देखा है। तो आपको क्या लगता है कि पांच राज्यों में जो चुनाव जो होंगे, तो दौरा भी हो चुका है अभी आपने कहा भी, तो किन राज्यों में जो स्थिति है कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकती है चुनाव आयोग के लिए?
अभी तो फिलहाल जो देख रहे हैं ऐसा तो कोई, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां अधिकतर शांति प्रिय राज्य हैं, यहां से कोई ऐसी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन हाँ ये जरूर है चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना है कि उनके पास जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो भारत सरकार की तरफ से आती हैं, वो ठीक वक्त पे उनकी मूवमेंट हो, उनकी सब कुछ आसानी से हो, क्योंकि अलग अलग राज्यों में उनको मूव करना है, तो उसमें जो लॉजिस्टिक जिसे कहते हैं पूरी तैयारी होती है फिर तमाम, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। और पहले भी अक्सर देखा है कि शायद एकाध राज्य को छोड़ के बाकी, अगर आप देखें पांच विधानसभा में सबसे अधिक सीट 230 मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद राजस्थान में 200 सीटें हैं, उसके बाद 119 तेलंगाना में, 90 छत्तीसगढ़ में और 40 मिजोरम। तो हो सकता है कि अलग अलग तारीख हो एक और, लेकिन एक दिन का पोल होने की संभावना लगती है, जैसे पहले हो चुका है। लेकिन परिस्थितियां जो कि चुनाव आयोग की अलग अलग समितियां गई हैं और पूरा आंकलन करके आते हैं, उसके बाद जब बैठ के फैसला लेते हैं और गृह मंत्रालय के अफसरों के साथ जब बैठ के परामर्श होता है, उसके बाद एक कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। तो मुझे ऐसा कोई विशेष इसमें नहीं लग रहा।
बिल्कुल, और पिछले दशक में हमने देखा भी है कि प्रायः जहां भी चुनाव हुए हैं तो छिटपुट बातों को छोड़ दें, बल्कि वो भी नगण्य, चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं।
जैसे मैंने कहा, चुनाव आयोग का सबसे बड़ा फोकस रहता है कि चुनाव शांतिप्रिय हो, चुनाव बिल्कुल आराम से हो और सबसे ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। तो उसके लिए जब आप कहेंगे फ्री, फेयर एंड पीसफुल पोलिंग है जिसका कहा जाता है, मतलब आराम से हो, कोई फ्री, कोई दबाव ना हो किसी पे भी, जो भी मतदाता पहुंचे मतदाता केंद्र में उस पर कोई किसी किस्म का दबाव ना हो और बिल्कुल सुचारू ढंग से प्रक्रिया चले।
चुनाव आयोग की ये भी कोशिश है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जाए। एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा कि देश को नई संसद मिली है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का लाभ महिलाओं को मिलने वाला है और ये विधानसभा में भी मिलेगा, तो भविष्य के लिए उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, इसमें दो चीज तो स्पष्ट है, क्योंकि अब तो ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए और अब ये है कि कार्यान्वयन होगा, उसके पूरी प्रक्रिया बनेगी, क्योंकि उसमें सबसे पहले कि जो हमारा जो सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके बाद जो आंकड़े निकलेंगे, उसके बाद उस आंकड़ों के तहत पे जो फिर 2026 में कार्य हुआ, फिर डिलिमिटेशन जो है, परिसीमन एक बहुत बड़ा इसमें कार्यक्रम होता है, उसमें वक्त लगता है। ये सब होने के बाद ये प्रक्रिया 2029 से लागू होगा, ऐसा स्पष्ट किया गया और ये ऐसा प्रावधान है। सवाल ये है कि इसमें अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या इसका फर्क होगा, देखिए हम सब जानते हैं देश में 50% आबादी महिला वर्ग की है, तो ऐसे में जरूर है, और पिछले कई चुनाव जो आंकड़े निकल के आए हैं कई राज्यों में तो महिला मतदाताओं ने ज्यादा चढ़ के भागीदारी दिखाई, और ये एक जिसे कहते हैं उस ट्रेंड से काफी चुनाव पे प्रभाव पड़ता आया है, क्योंकि पहले होता था कि भाई कम लोग निकल के आते थे घर से महिलाएं कई कारणवश से, अब वो ज्यादा अपने आप में निर्भर है, अपने आप ही आत्मनिर्भर है, तो खुद निकल के आते हैं, वोट डालते हैं, अपनी रेख का परिचय देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये उसी दिशा में देखनी चाहिए।
पीएम लगातार चुनावी राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। आज राजस्थान गए, मध्य प्रदेश का दौरा है, 26,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात वो दोनों राज्यों के मिलाकर देखें तो दे रहे हैं और उद्घाटन और लोकार्पण के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो आप विकास कार्यों के लिए जिस तरह से समर्पण दिख रहा है पीएम मोदी का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए, एक बात स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात हमेशा कहते हैं और कई बार कह चुके हैं अलग अलग मंचों से और खासकर ऐसे कार्यक्रमों में, कि उनकी सरकार और उनकी प्राथमिकता ये रही कि वो सिर्फ शिलान्यास ही ना करें बल्कि उसका अनावरण करें ताकि उसके बाद वो जन सुविधा जो लोगों को मिलनी चाहिए उन्हीं के कार्यकाल में पूरा हो। ये उनके सरकार का जिसे कहते हैं एक हॉलमार्क है, एक उपलब्धि है। और उसके पीछे दो तीन चीजें कि प्रधानमंत्री खुद इस पे नजर रखे रहते हैं और जिस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, हम सब जानते हैं इसमें काफी वक्त लगता है उसको पूरी तैयार करके, खड़ा करके उस ढांचा को तैयार करने है, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो आपके यहाँ गैस पाइपलाइन बिछ रही है या आपके यहाँ बॉटलिंग प्लांट लग रहा है, कई सारी चीजें हैं, या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी जो हमारे IIT खुले या एम्स के, इसके बाद वक्त लगता है। आप शिलान्यास करने के बावजूद वक्त लगता है इसको तैयार करके, इसका जिसे कहते हैं सुचारू रूप से वो चले। तो इसके लिए एक चीज देखा जाए, पिछले 9 सालों से जो मैंने अनुभव देखा है इसमें, एक प्रधानमंत्री गति शक्ति एक कार्यक्रम होता है जिसमें कि वे प्रधानमंत्री खुद और अपने आला अफसरों के साथ बैठ के ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कहीं ना कहीं जिसमें दिक्कतें आ रही हो किसी भी वजह से, चाहे राज्यों की समस्या हो या केंद्र की हो या केंद्र और राज्य के तालमेल में कोई समस्या हो, कई बार तो मंत्रालयों के अंदर केंद्र के अलग अलग विभिन्न मंत्रालय हैं उनके बीच में कोई तालमेल की कमी हो, ये भी कमी पूरी हो जाए, तो इस तरह से इसमें कोई भी अड़चन ना हो और है तो उसको कैसे हटाया जाए, इस पे दृष्टि रहती है। तो इससे ये होता है कि जैसे कहते हैं नाम जो है गति शक्ति है, गति पकड़ती है, प्रगति के तहत इसके ऊपर चलता है, कार्यक्रम नाम है प्रगति, तो उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लगातार रिव्यू होता है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज दर्शाती है कि ना सिर्फ शिलान्यास लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में वो पूरा होकर लोकार्पण होता है।
प्रधानमंत्री जी लगातार दौरा करते रहते हैं, आप देखो मध्य प्रदेश का दौरा उन्होंने 34 बार किया है आज को अगर जोड़ दें तो, और सितंबर में 7 बार दौरा कर चुके हैं। बीना में आपने देखा कि कितने उन्होंने विकास के वहाँ पे प्रोजेक्ट की घोषणा की है और शिलान्यास किया है, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे उस जगह को बिल्कुल एक विकास का रास्ता पूरा खोल के वो रख दे रहे हैं।
देखिए, अब ये चुनावी राज्य है, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम है जो पूरे करने हैं या कुछ और कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने धन मुहैया कराया, धन आवंटन किया है, तो लोगों तक उसको लोकार्पण करें या उसके पर शिलान्यास करें ताकि उस पर काम होना शुरू हुए है। जैसे आपने कहा चित्तौड़गढ़ गए, वहाँ 7,000 करोड़ का अलग अलग विकास के कार्यक्रम की उन्होंने कई जगह तो शिलान्यास किया, तो उसमें क्या है, एक गैस पाइप लेने जो कि गुजरात के मेहसाना से चलेगा, बठिंडा और पंजाब के गुरदासपुर से निकलेगा, और उसी के साथ एक LPG बॉटलिंग प्लांट अजमेर की बात चल रही है, अलग अलग रेलवे की प्रोजेक्ट्स हैं, सड़क के हैं और जिसे कहते हैं पर्यटक के लिए है, तो कई सारी चीजें हैं जिसपे कार्य होता है। और ये हर चीज, दो चीज इसमें निकल के आती है, एक विकास के हर कार्यक्रम चाहे अभी शुरू कर रहे हैं या कोई लोकार्पण हो, उससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, और जब अर्थव्यवस्था में गति मिलती है तो जाहिर सी बात है देश जिस तरह से प्रगति के पथ पे निकल रहा है और हम इस वक्त विश्व में 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं और पूरा जोर है कि अगले कुछ सालों में 3रे दर्जे पे हम पहुंचे, तो ऐसे में ये विकास के कार्यक्रम ही है जो भारत को आगे ले जाएगी। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है, लोग जो हमारे पास युवा शक्ति है उनको कार्य करने का मौका मिलेगा और देश को आगे बढ़ाने का उनका हाथ रहेगा।
खास बात ये भी है कि अभी हाल ही में एक विश्वकर्मा योजना जो है वो लॉन्च हुआ है, तो आप क्या देखते हैं आने वाली विधानसभा चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है?
देखिए, हर कार्यक्रम का कोई ना कोई फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिस आपने बात की विश्वकर्मा प्रोजेक्ट, वो हमारे देश में एक पुरानी परंपरा है, भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है कि वे जितने हमारे हाथ से कारीगर हैं जो अलग अलग ट्रेड्स में करते हैं कि उनका पूजन होता है अलग एक दिन, और उस दिन उस तरह की पूजा भी की जाती, तो विश्वकर्मा जो कार्यक्रम है वो उन्हीं के लिए, क्योंकि अब आज के तारीख में क्या है, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही है और पूरे विश्व में नई किस्म की सोच चाहिए, तो पुरानी व्यवस्था को उसको आप स्किल करें, उसको आप ज्यादा कुशल बने और नई आपके पास तकनीक हो आप कार्यक्रम करें, तो मेरे ख्याल से जो विश्वकर्मा स्कीम है इसमें कई चीजें जोड़ती है जो हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे पास ज्ञान है उसको, और उसके साथ साथ जो नई चीजें हमें चाहिए ताकि एक नए समाज की जब हम परिकल्पना कर रहे हैं, नए एक आर्थिक व्यवस्था की परिकल्पना कर रहे हैं जिसमें भागीदारी जन की हो और हमारे पास युवा शक्ति बहुत है, तो उसको तैयार करें आगे जिस तरह की अर्थव्यवस्था की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल सुचारू रूप में जाके बैठे।
तो कहीं ना कहीं से समग्र रूप से एक विकास की एक भूमिका, एक संकल्पना है सरकार के मन में,
इसमें एक छोटी सी बात है, जैसे मैंने अभी कहा ये जो सितंबर माह में जो लॉन्च हुआ था 17 तारीख को पिछले महीने, जो केस है उसमें कौन है, काम बढ़ाई जो हमारा किश्तियां बनाता है या हमारा जो लोहार है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, इस तरह के लोग जो आम व्यवस्था हम हर गली गांव कूचे में इनको देखते हैं, शहरों में भी आप देखते हैं सड़क के किनारे बैठे काम करे आ रहे, तो इनके लिए जो दिया जाए कि इनको भी कुछ ना कुछ आर्थिक तरह से भी मदद मिले और उनको नई स्किल मतलब ट्रेनिंग दी जाए। कईयों के मूलभूत 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग है, कईयों को 15 दिन की ट्रेनिंग है और उस दौरान उनको स्टाइपेंड भी दिया जाए ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे। तो कई सारे इसमें कल्पना की गई है और वजह यही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट है ये ना भूले हम, साथ ही साथ ये आगे वाले उद्योगों में काम आए, हमारे और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करें।
5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर मंथन भी चल रहा है। ऐसे में इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं और आगे आप क्या इसके लिए भविष्य देखते हैं?
जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कार्यकाल इन 5 विधानसभाओं के खत्म होने वाले हैं दिसंबर और जनवरी के माह में, तो उससे पहले उनका गठन होना जरूरी है। जहां तक रहा सवाल एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी शुरू से जब से 2014 से ही वो इस पे ध्यान रखते गए कि इस पे मंथन हो, इस पे विचार हो, बहस हो, लोगों के बीच में समझ हो, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे हम सब जानते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और एक साल में एक से ज्यादा बारी भी होता है, तो ऐसे में मानना है कि विकास के कार्यक्रम या तो उस दौरान ढीले पड़ जाते हैं या पूर्ण विराम लग जाता है, तो ये ना हो, गति उसकी लगातार चलती रहे। ये कहे पहले सब जानते हैं कि 1952 में जो पहले चुनाव हुए थे, जब चुनके आए थे 51-52 के बाद, तो राज्यों के चुनाव और केंद्र में एक ही चुनाव होता था और तकरीबन 1967 तक ऐसा ही होता आया, लेकिन उसके बाद अलग अलग राज्यों में सरकारें भंग होती गई, विधानसभा भंग होती गई, सरकारें गिर गई, तो ये साइकिल बिगड़ गया। अब फिर से एक प्रयास है और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी का हुआ है और वो उसकी जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद मेरे को लगता है बहस आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो हमें जो साइकिल जो चल रहा है अब उसी पे चलना है, इसमें और कोई रास्ता नहीं है।
मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं इन अभी 5 राज्यों में जहां चुनाव होंगे, उसके बाद राजस्थान है। तो वहां पे अगर हम देखें तो बीजेपी ने वहां पे शुरू में उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाए जा रहे हैं और जिस तरह से खुद पीएम वहां पे लगातार दौरा कर रहे हैं तो बीजेपी की रणनीति वहां पे काफी मजबूत दिख रही है, आपको क्या लगता है?
देखिए इतना जरूर है कि जैसे सूची जारी की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मध्य प्रदेश में दिग्गज नेता जिसमें कुछ केंद्र के मंत्री भी हैं और उनके आला ऑफिस बेयरर्स हैं, जैसे उनको कहा गया भाई आप चुनाव में उतरिए। और चुनाव में इसके दो तात्पर्य, एक तो ये है कि भाई जो बड़ा नेता हो गया तो भाई ये नहीं कि आप लोकसभा में हैं तो आप हेवी मैदान में आएंगे, सक्रिय रहेंगे, उनके अपने समर्थकों के साथ जुड़ेंगे, तो एक नई किस्म से पार्टी के अंदर ऊर्जा भरने की बात आती है। एक दूसरा ये है कि आप अगर देखिए जैसे कुछ तो ये भी है कि कर्नाटक में जो प्रयोग हुआ था या उससे पहले और राज्यों में कि जो सिटिंग विधायक कई सारे बदले गए थे उसमें कुछ समस्याएं कुछ कठिनाई बाहर आके निकल के आई थी, उसके साथ इसमें क्या होता है जब एक मंझे हुए लीडर वापस मैदान में आते हैं तो पार्टी के अंदर एक नई उत्साह आती है और जो पार्टी में पार्टी के लिए काम करते हैं तो वो चीज जो है मेरा लगता है कि ये उस तरह की एक प्लानिंग है। और जैसे प्रधानमंत्री खुद इतने सक्रिय रहते हैं, चुनाव जाते हैं, अलग अलग सभाएं करते हैं, तो उसमें ये एक जैसे कहते हैं दो और दो दो दुनी चार ही होगा, ऐसा मानना है।
तो केवी प्रसाद साहब सुर्खियों में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
अभी आप सुन रहे थे 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति नारायण मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।